dani da ba ma ba ga ma ba ma ga re sa. Re ga ga re ga ma ma ga ma ba ma ga ma dani sa ni dani da ba ma ba ga ma ba ma ga re sa. Ma sa ni da ma ni da ba ma ga ga ma ba ga ma ba ga ma sa ni da ma ga re sa. Ma sa ni da ma ni da ba ma ga ga ma ba ga ma ba ga ma sa ni da ma ga re sa.
Bhakti sang.
नमस्कार धन्यंकार, भक्ति संगीत के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ मुक्ता। कहते हैं संगीत परमात्मा तक पहुंचने का सबसे बढ़िया माध्यम है। जी हां, संगीत एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा भक्ति में डूबकर आप परमात्मा के साथ अपने तार जोड़ सकते हैं। कुछ ऐसा ही एहसास हम आपके लिए लेकर आते हैं हर महीने भक्ति संगीत के माध्यम से। आज के इस एपिसोड में बहुत ही खास हस्ती हमारे साथ हैं। वो कौन है ये यकीनन हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।
मंगना है पला सबदा दाता तेरे द्वारे तो, मंगना है पला सबदा दाता तेरे द्वारे तो, हर बिगड़ी बन जांदी तेरे एक इशारे तो। मंगना है पला सबदा दाता तेरे द्वारे तो, मंगना है पला सबदा दाता तेरे द्वारे तो। रखी द्रौपदी दी लाटेर साड़ियां दे, किता सुखी सुदामे नू ओनु महल माड़ियां दे। पत रखी द्रौपदी दी लाटेर साड़ियां दे, किता सुखी सुदामे नू ओनु महल माड़ियां दे। मिलदी खैर सबनू तेरे परे पंडारे तो, मिलदी खैर सबनू तेरे परे पंडारे तो, हर बिगड़ी बन जांदी दे एक इशारे तो। मंगना है पला सबदा दाता तेरे द्वारे तो, मंगना है पला सबदा दाता तेरे द्वारे तो। संतां दा दाता रखवाला ए, हर स्वास स्वास जपनी एदे नाम दी माला ए। बाबू ओमी संतां दा दाता रखवाला ए, हर स्वास स्वास जपनी एदे नाम दी माला ए। कोई होर सहारा नहीं वद एदे सहारे तो, कोई होर सहारा नहीं वद एदे सहारे तो, हर बिगड़ी बन जांदी एदे एक इशारे तो। मंगना है पला सबदा दाता तेरे द्वारे तो, मंगना है पला सबदा दाता।
ये गीत जो आपने सुना, इसे पहले सुनवाने का मकसद यही था कि इसके बोल और इसकी आवाज़, जी हाँ, ये दोनों आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ निरंकारी मिशन की एक मशहूर जोड़ी बाबू ओमी जी मौजूद हैं, और हमारे ये अहभाग्य हैं कि आज स्टूडियो में ये हमारे साथ हैं। इनके लिखे और गाए गीत आप अक्सर सुनते और गुनगुनाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। उन्हीं बातों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं बाबू ओमी जी का। बहुत बहुत स्वागत है बाबूजी आपका।
धन्यवाद जी।
ओमी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
धन्यवाद जी।
ये नाम कुछ ऐसा है जो अलग लगता ही नहीं, बाबू ओमी ही निकलता है, न केवल ओमी जी निकलता है, न केवल बाबू निकलता है। ये जोड़ी जो है ये अपने आप में दिखाती है जो जुड़ाव है या वो जो एक सामंजस्य वाली बात है। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहेंगे ओमी जी, ये जोड़ी बनी कैसे?
मुक्ता जी, आज से लगभग 50 वर्ष पहले रामलीला ग्राउंड में समागम था, सेवा दल के कैंप में थे और आदरणीय बाबूजी मेरे पास आए। मैं इनको बाई फेस जानता था लेकिन ऐसे मुलाकात नहीं थी, गीत भी सुनता था इनके, और आए और कहने लगे, बैठे बातचीत करते करते इन्होंने कहा, ओमी जी मेरा बिस्तर आज आया नहीं, कल आ जाएगा, तो आज अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ यहीं पे सो जाऊं। तो मैंने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो सकते हैं। ये था हमारी दोस्ती का शुभारंभ।
ये पहली मुलाकात थी।
ये पहली मुलाकात
और वो मुलाकात बाबूजी, आप उसको किस रूप में देखते हैं? आपको कभी एहसास हुआ कि नहीं ये जोड़ी जो है ये हिट हो जाएगी?
इनका बहुत शौक था गाने का भी, तो बस मिले और उसके बाद किसी कारणवश मैं इनके घर ही चला गया किसी काम से, और वहाँ पर कोई हौजरी का काम होता था तो वहाँ रहने भी लग गया और सीखने भी लग गया काम। तभी बस एक दो गाने वहाँ मशीनों पर बैठे बैठे गाने लिखे और उसमें अच्छा। अपने आप ही बाबू ओमी आ गया और हम फिर दोनों गाने लग गए इस तरह साथ।
तो हम ये मान सकते हैं कि इस दोस्ती की भी गोल्डन जुबली हो चुकी है अब
जी।
ये जोड़ी निरंकारी मिशन में बात करते हैं तो ये जोड़ी अपने आप में बहुत से एहसास लेकर आती है। आपके बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो संतों के कई बार मार्ग भी प्रशस्त कर देते हैं। कई बार मन जब थोड़ा सा डामाडोल हो रहा होता है तो आपके गीतों के माध्यम से वो बूस्टअप जिसे कहते हैं वो मिल जाता है। आपने एक गीत लिखा था 50वें समागम पर ही जो बहुत मशहूर हुआ था, कुछ पंक्तियाँ उसकी याद है बाबूजी आपको?
गीत तो अब इस टाइम याद नहीं है मुझे।
हमें वो याद है,
वो होगा।
हम पहले अपने श्रोताओं को वो गोल्डन जुबली गीत सुनवाते हैं और उसके बाद आपसे बातचीत जारी रखेंगे।
सारी दुनिया दे विच वंडिया जिसने प्यारे अमन करम कीता सतगुर मेरे सब आखन तन तन ते गोल्डन जुबली है अज मना रे आए मिशन ते गोल्डन जुबली है
बाबूजी आप रावलपिंडी से निरंकारी कॉलोनी पहुंचे और उमी जी पाकिस्तान के सरगोदा से निरंकारी कॉलोनी पहुंचे, तो ये दो अलग अलग रास्ते कॉलोनी में आके मिले, ये जर्नी आपसे जानना चाहेंगे। पहले बाबूजी आप बताइए।
जी, मैं तो पाकिस्तान बनने के बाद दिल्ली पहुंचा रावलपिंडी से। जब हम ऐसे इस प्रकार से मिले तो बाबा गुरबचन जी का हुक्म आया कि बाबूजी आप कॉलोनी में आ जाइए। दास बहुत डरता था कि वहाँ जाके गुरु के चरणों में कोई अवज्ञा हो जाए, कुछ हो जाए, तो घबराहट होती थी बहुत। पर ओमी जी ने मुझे बहुत सहारा दिया, बहुत समझाया, और दास के साथ ही हम दोनों, ये मुझे कहते हैं मैं आपको छोड़ के आता हूँ कॉलोनी में, तो हम दोनों आए कॉलोनी में और फिर वहाँ पर आकर बाबा जी से मिले। और बाबा जी ने कहा अच्छा अभी तो यहाँ पर कोई कमरा नहीं है, तो आप कोई कमरा किराए पर ले लो। अब हम तो दोनों अनजान थे, हम क्या करते, तो बैठे हैं वहाँ पर। अचानक ही गली से एक महापुरुष बहन निकली और वो बोलने लगी की गल है इत्थे किस तरह बैठे हो बच्चे नू लेके, शाम पड़ गई थी बिल्कुल, और हम सोच रहे थे कहाँ जाएंगे हम। तो वो बहन कहती है क्या बात है, हमने कहा ऐसे बाबा जी ने तो ऐसे कह दिया कि आप लोग किराए पर ले लो। तो कहते मेरे को है कमरा, तुम एक कमरा मेरे को ले लो। एक और बहन पास से निकली, वो कहने लगी उम्मीद जी साढ़े भी है सामने आमने दोनों का कमरा है, तो एक तुसी ले लो एक वो ले लो। और उन्होंने हमें तब किराए पर अपने पास रखा। इस तरह से हम कॉलोनी में जम गए और बाबा जी की कृपा से
अभी तक आप यहीं हैं और सेवा जो है आप कर रहे हैं।
जी
उम्मीद जी, बाबू जी को निरंकारी कॉलोनी लाने का श्रेय आपको जाता है। आप करोलबाग हुआ करते थे उस दौर में, ये बात तकरीबन 30-40 साल पहले की होगी।
जी,
तो करोलबाग से आपका कैसे ध्यान हुआ कि नहीं आप तो छोड़ने आए थे बाबूजी को।
हम काफी समय इकट्ठे रहे वहाँ पे और इकट्ठे ही संगतों में जाते थे और इकट्ठे ही काम भी करते थे सारा दिन, हम मशीन पे बैठ के हौजरी का काम था हमारा। लेकिन कई बार बाबूजी को हमारे मिशन के सात सितारों में डॉक्टर देसराज जी थे, उन्होंने इनको कहा कि आप कॉलोनी आ जाओ, कॉलोनी आ जाओ, लेकिन ये नहीं जा सके। कुछ इनके हृदय में डर था कि मैं कैसे जा के गुरु के पास रहूँगा। लेकिन जब हजूर सच्चे पातशाह का, बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज का ऐसा आदेश आया तो फिर भी थोड़ा ये घबरा रहे थे यहाँ आने के लिए। फिर मैंने इनको कहा चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मेरी भी शादी हो चुकी थी
जी।
एक बच्ची भी थी, तो इस तरह से हम दोनों निरंकारी कॉलोनी में पहुँच गए
और यहाँ फिर रहमता करदा है चोलियाँ।
थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मेरा होता है कभी कभी जब मिल के बैठ जाते हैं तो, और गाते हैं हम सालों साल इकट्ठे गाए। हमने रामलीला ग्राउंड से समागम में हम बोलते थे, फिर जब राजघाट के सामने समागम हुआ वहाँ पर भी बोले, फिर बाबू जी की शादी हो गई, फिर बहन विजय जी आ गए
जी।
फिर इन्होंने गाना शुरू किया।
बाबू विजय के तो बहुत सारे गीत हमारे पास है, वो हम अपने लिसनर्स को सुनवाए।
पूरा सतगुर आया रे, आके राम मिलाया रे, आके राम मिलाया रे, धन सतगुरु धन।
ये खुशियाँ लेके आया रे, रहमते लेके आया रे, ये खुशियाँ लेके आया रे, रहमते लेके आया रे, धन सतगुरु धन।
वो पूरा सतगुर आया रे, आके राम मिलाया रे, ये आके राम मिलाया रे, धन सतगुरु धन।
ये खुशियाँ लेके आया रे, रहमते लेके आया रे, ये खुशियाँ लेके आया रे, रहमते लेके आया रे, धन सतगुरु धन।
पूरा सतगुर आया रे, दयाल गुरु कितना विशाल गुरु,
कितना दयाल गुरु कितना विशाल गुरु,
कौड़ियों के बदले में देता है ये लाल गुरु,
कौड़ियों के बदले में देता है ये लाल गुरु।
हाँ
राम से कंगाल को खुशहाल बनाया रे, पूरा सतगुर आया रे, आके राम मिलाया रे, आके राम मिलाया रे। धन सतगुरु धन, पूरा सतगुर आया रे। मिला है जो आज गुरु बड़ा बेनियाज गुरु,
मिला है जो आज गुरु बड़ा बेनियाज गुरु,
बाबू ओमी गरीबों का गरीब नवाज गुरु,
बाबू ओमी गरीबों का गरीब नवाज गुरु।
हम दर पे आए इसने भाग जगाया रे, पूरा सतगुरु आया रे, आके राम मिलाया रे, आके राम मिलाया रे।
बाबूजी आपकी जोड़ी बाबू हीरा के नाम से भी मशहूर हुई, बाबू बनवारी के नाम से भी मशहूर हुई, और अब बाबू ओमी के नाम से। तो उस दौर में जब आप लिखा करते थे, कोई ऐसी खास बात जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ?
उस टाइम बहुत कम संगत थी, मंडी हाउस हम रहा करते थे, मंडी हाउस बहुत मशहूर जगह है जहाँ पर हम रहते थे। तो वहाँ कुछ लोग थे जिन्होंने पार्टीशन के बाद आकर ज्ञान लिया, और कुछ वहाँ पाकिस्तान के एक दो महापुरुष थे। तो उसी दौरान में मेरे भाई साहब ने भी ज्ञान लिया, और उनकी प्रेरणा से मैं बहुत छोटा था, मुझे भी ज्ञान हुआ। और शहनशाह जी का एक दिन संदेश आया कि वो आ रहे हैं मंडी हाउस में, तो मैंने तैयारी की। मैंने कहा अगर शाम को शहनशाह जी आएंगे तो गीत तो बोलना पड़ेगा, तो गीत लिखा मैंने, मैं हाँ गुड्डी तेरी तेरे हाथ डोरी।
मैं हाँ गुड्डी तेरी तेरे हाथ डोरी, दाते छड़ना देवी डोर, मैं उड ना जावा किते होर, दाते उड ना जावा किते होर।
इस तरह शुरू कर दिया, और दो अंतरे बनने के बाद आगे बंदा नहीं गीत। तो हीरा जी के पास दास गया, मैंने कहा हीरा जी ये गीत पूरा नहीं हो रहा, चलो आज शाम को बोलना है तो पूरा करें। तो कुछ उन्होंने बताई लाइनें, कुछ दास ने, तो पूरा गीत चार अंतरों का, तीन अंतरों का लिखकर, और शहनशाह जी शाम को पहुंच गए। छोटी सी संगत थी, कुछ मोहल्ले के लोग आ गए, कुछ हम लोग आ, सब बैठ गए। और शहनशाह जी एक मंजी पर ही बिस्तर बिछा दिया, उसके ऊपर ही बैठ गए। और एक फ़ैन लगा हुआ था इस साइड, इधर दास बोल रहा था, और छोटी सी उम्र थी उस टाइम, 12-1 साल की होगी। तो
12 साल की उम्र में आपने गीत लिखा था?
मैंने 8 साल में गीत लिखा था।
क्या बात है।
तो वो मैं उस टाइम ये गीत बोला, और शहनशाह जी ने पूरी नज़रें, उनकी जैसे गर्दन थक भी जाए, इतनी देर तक वो मुझे देखते रहे, और मैं मस्ती में बोल रहा हूँ और वो देखे जा रहे हैं, और इतनी रहमत उन्होंने की कि मुझे ऐसे लगा मेरे रोम रोम में उनकी किरणें जा रही हैं। और उस दिन से लेके आज तक मेरी कलम रुकी नहीं, बस बोलता ही गया, लिखता ही गया, पर बोलता गया।
क्या बात,
सच्चे पातशाह की कृपा है।
तो आपकी उसी जोड़ी का लिखा और गाया गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
हाँ जी।
और उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओमी जी की जो कलम है वो गायकी से कविता की तरफ भी निकली है। बहुत सारे समागमों पे हमने आपकी बहुत सारी कविताएं भी सुनी हैं, तो वो दौर कैसा था, तब लिखना कैसे आपने शुरू किया, वो हम आपसे जानेंगे। लेकिन पहले बाबू हीरा जी बाबू बनवारी जी की जोड़ी का गीत सुनते हैं।
मैनू है आस तेरी, तू आसरा है मेरा, तेरी याद बिच ही बीते हर शाम ते सवेरा। मैनू है आस तेरी, तू आसरा है मेरा, तेरी
श्याम गोली तैनू किवें जावा है दो जहां दिवाली सुन ले मेरी सदावां रुल दे होए दा प्रीतम चरना च रख बसे
लिखते ही हैं, आप गाते हैं ये भी हमने देख लिया, लेकिन आप कविताएं भी इतनी लिखते हैं। हमने कई बार समागम पर जो समस्या दी जाती है उन पर आपने बहुत खूबसूरती से मन के भाव लिखे हैं, तो ये जो पूरी जर्नी है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी?
हाँ मुक्ता जी, बात यह है कि 1952 में
जी,
मेरे पिताजी जो इस सत्य की खोज में थे, जब दिल्ली में पहुँचे तो उनको किसी ने बताया कि बाबा अवतार सिंह जी महाराज पहाड़गंज में हैं, वो इस प्रभु का ज्ञान देते हैं, और वो पहुंच गए। वहाँ से उन्होंने ये ज्ञान लिया और सारे परिवार को फिर ज्ञान दिलाया, फिर सबको चलाया। फिर उनका शौक था कविता, वो लिखा करते थे।
अच्छा।
घर पे बैठे बैठे कोई उनको ज़्यादा बोलने का वो चाव नहीं था कि संगत में जाके मैं बोलूं, लिखते थे तो मैं उनसे पूछा करता था कि ये आप क्या लिख रहे, कहते नहीं वैसे ही बस लिख रहा हूँ। तो उनसे मुझे ये लिखने की प्रेरणा मिली। बचपन से ही ये जो रिमत है कविता की या गीत की, ये सोच के नहीं लिखी जा सकती। ये तो कलम जो है ये दातार खुद ही चलवाता है
जी,
और क्या लिखना है वो पहले से नहीं पता होता। ये साथ साथ में मटेरियल सतगुरु भेजता रहता है और लिखा जाता है, और बाद में पता चलता है कि ये गीत बन गया या कविता बन गई, जो भी।
इंस्पिरेशन सोर्स तो वही है, वहीं से आपको प्रेरणा मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बात है जिसके आप गवाह रहे हों और उसने आपको मजबूर कर दिया हो कि नहीं आप ये कलम के जरिए ये संदेश पहुंचाएं भक्तों तक।
कई बार ऐसा होता है कि संगत में अनाउंसमेंट्स होती हैं, स्पेशल अनाउंसमेंट्स होते हैं, या हुजूर सच्चे पातशाह विचार करते हैं, विचार में कभी सिमरन की बात करते हैं, कभी सेवा की बात करते हैं
जी,
कभी और भी जीवन जीने की बात करते हैं, तो वो जो बातें वचन होते हैं वो हृदय में बस जाते हैं और समय समय पर वही कविता या गीत का रूप लेकर निकलते हैं
जी। तो इतनी जिम्मेवारियां आपको निरंकारी कॉलोनी में भी प्रबंधक के रूप में भी यहाँ पे आप सेवा करते हैं, तो किस तरह से आप वक्त भी निकाल लेते हैं कि मैंने इस रूप में भी सेवा करनी है?
ये मनुष्य के बस की बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हुजूर सच्चे पातशाह ने बहुत सी जिम्मेवारियाँ निरंकारी कॉलोनी में दे रखी हैं, लेकिन ये बाबा जी की कृपा है, और यही प्रार्थना है कि दातार कृपा करो ताउम्र अंतिम समय तक ये जो सेवा आपने दे रखी है इसको इसी प्रकार निभाता रहूं।
बाबूजी, हमारे बहुत सारे फॉरेन लिसनर्स भी हैं, निरंकारी मिशन की अब कोई सीमा नहीं रही है, विश्व में पहचान है निरंकारी मिशन की, लोग फॉलो करते हैं, आपको भी प्रचार के लिए कई बार सेवा रूप में भेजा गया है इंडिया से बाहर, तो बाहर का कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा आपका अनुभव हो जो आप हमें बताना चाहें?
पहली बार तो दास गया बाबा गुरबच्चन जी के साथ, उस टाइम पे बहुत कम संगत थी इंग्लैंड में, उपासक जी थे, सुखजिंदर जी थे और दो चार दस महापुरुष थे, वो तो हम टूर करके वापस आ गए। मैं ढाई महीने वहाँ रहा, बाबा जी छोड़ आए थे मुझे कि आप यहाँ पर देखो, आपका तो वीज़ा काफ़ी लगा हुआ है। तो मैं ढाई महीने रहने के बाद, क्योंकि संगत बहुत कम थी और संगत शाम को जुड़ती थी, तो 7 बजे आके फिर सत्संग भवन में आते, छोटा सा एक भवन था और वहाँ फिर संगत 1 घंटे की होती, फिर वो अपने अपने घर भाग जाते थे और फिर मैं अकेले का अकेला, तो मेरा मन नहीं लगा वहाँ। रोज़ मैं इनको वहाँ से, क्योंकि टेलीफोन का भी कोई ज़रिया नहीं था उस टाइम शायद, तो मैंने पत्र लिखे 2-3 इनको
जी, ओमी जी को
जी, बाबा जी को तो लिख नहीं सकता, ओमी जी को लिखे। मैंने कहा भाई मुझे बुला लो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, बहुत याद आ रही है सबकी। तब इन्होंने जाके बाबा गुरबच्चन जी को कहा कैसे एक चिट्ठी आई, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं उन्होंने उत्थे रहना है। फिर दूसरी बार ये गए, तीसरी बार जब गए तो बाबा जी ने कहा अच्छा नहीं लगता ये तो बुला लो, तो बस फिर इन्होंने वहाँ बताया कि भाई आ जाओ आप, और बस वापस आ गया। और फिर दोबारा जब बाबा हरदेव जी के साथ गए, तब एक जगह पर मीटिंग थी जिसमें मीटिंग क्या बातचीत करनी थी सब लोगों के साथ, सब धर्म के लोग आए थे और वहाँ पर दास भी गया साथ में बाबा जी के, तो 2-4 मिनट बाबा जी ने 10 मिनट बात की उनसे, और उसके बाद बाबा जी ने कहा बाबू एक गीत सुना दे। दास ने उनका हुक्म माना और एकदम डायरी उठाकर गीत बोला, और वो यही गाना था, तेरी खामोश जुबां को जो ये समझा होता, ऐ खुदाया तेरा इंसान फरिश्ता होता।
क्या बात, कितना गहरा आपने लिखा कि तेरी खामोश जुबां को अगर समझा होता
जी,
ऐ खुदाया ये
तेरा इंसान फरिश्ता होता,
फरिश्ता होता, क्या बात है। इसी गहराई को जब आपने गाया था तो वो दिलों तक सीधे पहुंची थी, क्यों ना ये गीत सुनवाया जाए अपने श्रोताओं को।
तेरी खामोश जुबां को जो ये समझा होता, तेरी खामोश जुबां को जो ये समझा होता, ऐ खुदाया तेरा इंसान फरिश्ता होता, ऐ खुदाया तेरा इंसान फरिश्ता होता, तेरी खामोश जुबां को। शुक्र है खाक का पुतला ही बनाया तूने, शुक्र है खाक का पुतला ही बनाया तूने, जाने क्या होता जो कुछ और बनाया होता, जाने क्या होता जो कुछ और बनाया होता, तेरी खामोश जुबां को। ना है तालीम ना दौलत है ना ताकत मुझ में, ना है तालीम ना दौलत है ना ताकत मुझ में, बाबू क्या होता जो तेरा भी न साया होता, बाबू क्या होता जो तेरा भी न साया होता, तेरी खामोश जुबां को जो ये समझा होता, ऐ खुदाया तेरा इंसान फरिश्ता होता, तेरी खामोश जुबान को।
ओमी जी, निरंकारी मिशन अब धर्म की दीवारें भी तोड़ चुका है, हर इंसान में परमात्मा बसता है ये संदेश देता है। आप जी भी प्रचार यात्राओं पे गए हैं कई बार, आपने भी अलग अलग अनुभव लिए होंगे, तो ऐसा कोई अनुभव, हम अभी बात कर रहे थे युगांडा का, आप बता रहे थे, तो वो हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कीजिए।
नजूर सच्चे पाशाह ने 1998 में मेरा फॉरन का टूर बनाया था, उस टूर में मैं कीनिया, युगांडा, दुबई इत्यादि वहाँ भेजा था बाबा जी ने। तो युगांडा का एक अनुभव है कि वहाँ पर उस समय में जो हमारे इंडियंस थे या पाकिस्तानी थे या और लोग, वो घरों से बाहर नहीं निकलते थे, खतरा था वहाँ पे। तो वहाँ जाके मैंने देखा कि चाहे वो हिंदू थे या मुस्लिम थे या सिख थे या ईसाई थे, वो सभी मिलकर एक जगह पर ही बैठकर वो सत्संग किया करते थे। हमारे एक महात्मा थे वहाँ पर, मुझे आज भी याद है, आदरणीय अशोक शर्मा जी, तो वो उस संगत को चलाया करते थे और सबको इकट्ठा करके एक जगह पे बैठ के इस निरंकार प्रभु परमात्मा की याद किया करते थे
जी।
और उस समय भी मुझे लगभग 15-20 महापुरुषों को ज्ञान देने का अवसर मिला, तो ये मेरा वहाँ पे अनुभव था। और आगे और भी फिर बाहर जाने का अवसर सच्चे पातशाह ने दिया, फिर 10 साल के बाद बाबा जी अपने साथ ले गए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि बहुत स्थानों पर बाबा जी अपने साथ ले गए। वहाँ पे भी जाके दृश्य देखे, बाबा जी की कृपा से NIS करने का अवसर मिला।
तो वहाँ से वापस आने के बाद बाबू जी, आपने वहाँ का अनुभव देखा होगा, आपने भी सुना होगा, वहाँ से वापस आने के बाद इस जोड़ी की कलम ने क्या लिखा?
मैंने लिखा है गीत, समागम पहुंच गया UK, मुबारक हो मुबारक हो, ऐसे गीत लिखा था।
समागम, ये जब खबर आई थी तब
जी, जी।
मुबारक हो गया वो।
जी जी।
तो जब गीत लिखा जाता है, आप लिखते हैं गीत, तो किस तरह से रहती है तैयारी? मन में एक भाव आता है, कभी ओमी जी कहते होंगे नहीं कि ये एक थॉट आया है, इस पर लिखना है, तो तैयारी कैसे होती है उसकी?
तैयारी तो मन में पहले कुछ ध्यान आता है, और दास का ये मशहूर है एक बात कि मैं मूवी बहुत देखता था।
अच्छा।
तो वो इसीलिए कि मुझे ट्यून मिले वहाँ से, कोई तर्ज मिले जिस पर मैं गीत लिखूँ। मैंने ट्यून के बिना कभी लिखा नहीं है, जैसे शायरी लोग करते हैं, जैसे कविता लिख लेते हैं बिना ट्यून के, मेरे बस की बात वो नहीं थी। मैं तो नई पिक्चर देखी और उस पर जो अच्छा गीत लगा उस पर लिख कर ले गया, और संडे को संगत होती थी इतवार की, तो ज़रूर नाम आता था। तो सच्चे पातशाह की कृपा है।
उम्मीद जी, कुछ ऐसे गीत हैं जो मिशन के बाहर भी निकले और संसार में अगर देखें, आज भी आपके लिखे वो गीत गुनगुनाए जाते हैं बाहर?
हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत से गीत हैं, जैसे ये अभी हमने गीत बोला ये तू ना फड़दा बा, ये तो बहुत पॉपुलर हुआ है, किसी ने इस गीत को वो भर के उसमें CD के बेचना शुरू कर दिया, बाहर चल रहा है, ये बहुत चल
जी,
रहा है
जी।
तो इसी तरह अभी बाबू जी कह रहे थे कि मैं बिना ट्यून के नहीं लिख सकता, इनको याद नहीं है, हम स्टूडियो में कैसेट किया करते थे, लगभग 20-25 कैसेट हमने, ये कल्याणी स्टूडियो है दरियागंज में, वहाँ पे हमने किए हैं। तो वो स्टूडियो वाला एक दिन कहने लगा, यार तुम बहुत अच्छा लिखते हो, हमारे कैसेट स्कूलों में जाते हैं बच्चों के लिए,
अच्छा
आप कोई ऐसे गीत लिख सकते हो? इन्होंने कहा हाँ मैं लिख दूंगा। तो उन्होंने एक सब्जेक्ट दे दिया, गुब्बारे।
अच्छा।
सिर्फ उन्होंने कहा गुब्बारे के ऊपर मुझे 6 गीत चाहिए। तो बाबू जी ने जो गीत लिखे और बाकी म्यूजिक वगैरह का सारा पैराफेरनेलिया उनके पास था, और बहुत सुंदर आवाज किसी गायक की, और वो 7 गीत जब मैंने सुने तो मेरी आंखों में आंसू थे। कि इस प्रभु ने कितनी बड़ी शक्ति बाबूजी को दे रखी।
बाबूजी इतना कुछ है, बाहर भी देखें कुछ जिम्मेवारियां भी होती हैं। कभी निरंकारी मिशन से बाहर की कोई ऐसी सोच मन में आई कि नहीं मुझे अपना करियर देखना है?
जैसे पहला जो टूर इंग्लैंड का किया था बाबा गुरुवचन जी के साथ, तो वहाँ गए थे तो हम तो ऐसे ही थे, कोई काम काज नहीं है और सिर्फ गीत लिखना और बोलना। तो बाबा जी साथ ले गए इंग्लैंड, वहाँ से कुछ रहमतें मिली संगतों की। तो दास वापस आके सोचा कि अब कोई काम ही कर लें, इस तरह से कैसे कब तक चलेगा, क्योंकि शादी हो चुकी थी, विजय जी घर आ गए थे और एक बच्चा भी था। तो बाबा गुरुवचन जी वर्कशॉप में ही होते थे ज़्यादा, तो वहाँ बाबा जी के पास जाके उम्मीद जी भी गए, दास भी गया। तो दास ने कहा कि जी मेरे पास 20,000 रुपये हैं, मैं एक कोई ऑटो डाल लेता हूँ तो मेरा काम चलता रहेगा, किसी को दे देंगे चलाने के लिए। बाबा गुरुबचन जी ने कहा तू तो कुछ नहीं करना, तेरे कपड़े भी काले होंगे तो मूवी काला होगा सार वक्त दे लबड़िया रहेगा, तू बस गीत लिखा करते प्रचार करे अगर तेरा और कोई कब लिए। और सच्चे पाशाह ने उसी तरह से चलाया
और वो आप चल भी रहे हैं और आपके गीत जो हैं वो न जाने कितनों को राह दिखा रहे हैं।
नहीं, ये सच्चे पाशाह की कृपा सर।
और यहाँ अपने श्रोताओं को हम ये भी बता दें कि बाबू ओमी जी के लिखे और गाए गीत बहुत जल्द आप तक पहुँचेंगे। इस समागम पर एक MP3 हम रिलीज करने वाले हैं बाबू ओमी जी के गीतों की, और वो आपके लिए आपको इस समागम पे MP3 के रूप में मिलेंगे। ओमी जी बातें तो बहुत सारी हैं, बाबूजी से भी उनके जीवन के बारे में, इस गुरु की जो कृपा इन पर रही है उसके बारे में हमने जाना। अभी हालांकि कलम नहीं देखती है समय, और ये जो दर पे आप जुड़े हैं ये उम्र इसकी मोहताज नहीं होती है, लेकिन आज के दौर में देखें तो बहुत से और गीतकार आ रहे हैं, गायक आ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, ऐसे नौजवान जो भक्त आ रहे हैं निरंकारी मिशन में, आप उनको क्या कहना चाहेंगे?
उनके लिए भी हमारी यही शुभकामना है कि जिस मिशन के साथ जुड़े हैं, ये सत्य का मिशन है, ये मनुष्य को जो जुड़ जाता है एकदम से परिवर्तित हो जाता है, उसकी भावना शुद्ध हो जाती है, उसके जीवन में गुणों के भंडार आने शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसे नौजवान आ रहे हैं और लिख रहे हैं, हमारी ये शुभकामना है कि वो उसमें सक्सेस प्राप्त करें, और करेंगे ही, क्योंकि बाबा जी का हाथ हमारे सर पे है और वो शुभ हाथ जो है वही सारे कार्य करता है। उनके लिए मैं शुभकामनाएं इस दातार से करता हूँ।
बाबू जी आप,
मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं था और किसी तरह से भी काबिल नहीं था, मगर सदगुरु की कृपा से लिखता रहा। बस इसकी इतनी मेहर रही है बाबा जी की कि नम्रता में रहे और किसी तरफ और तरफ देखा नहीं है, और अपने आप ये गीत लिखते गए। तो मेरी तो यही कामना है, जो नए लिखने वाले बोलने वाले आ रहे हैं, अगर वो इस तरह से गुरु की ध्यान लेकर, जैसा जैसा बाबा जी कहते हैं उनका ध्यान लेकर अगर सब लिखेंगे और बोलेंगे तो सच्चे पाशाह कृपा होगी और आगे से आगे वो बढ़ेंगे। मैं तो इतना कहना चाहूँगा।
और ये सच कहा गया है कि विचार ही शब्दों का रूप लेते हैं, आपके मन में जो विचार उठ रहे होते हैं वही आपका व्यक्तित्व बना देते हैं और वही कलम के रूप में, आपके कर्म के रूप में सामने आते हैं। तो विचारों को शुद्ध रखना है, इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबू ओमी जी, आप स्टूडियो में आए और आपने हमसे ये बातें शेयर की।
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुक्ता बहन जी।
धन्यवाद जी, और बहुत जल्द भक्ति संगीत के एक नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
तेरी रहमत की बारिश बिन कलश इस मन के रीते हैं, तेरी रहमत की बारिश बिन कलश इस मन के रीते हैं, करो कृपा के हम दाता तेरी कृपा पे जीते हैं, तेरी रहमत की बारिश बिन कलश इस मन के रीते हैं। बाबू ओम स्वामी हमारा कोई होता ना सहारा अगर ये तुम्हारा नजर मिलता। बाबू ओमी हमारा कोई होता ना सहारा अगर ये तुम्हारा नजर मिलता। कि हम जीवन की हर बाजी यहीं पर आके जीते हैं। कि हम जीवन की हर बाजी यहीं पर आके जीते हैं। करो कृपा के हम दाता तेरी कृपा पे जीते हैं। तेरी रहमत की बारिश बिन कलश इस मन के रीते हैं। करो कृपा के हम दाता तेरी कृपा पे जीते हैं। तेरी रहमत की बारिश बिन कलश इस मन के रीते हैं।
भक्ति संग